Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami. Kidrishosi Maheshwara, Yadrishosi Mahadeva, Tadrishaya Namo Nama, Yo Asau Soaham Yajami. Om Tat Sat Brahmane Nama. Jagradadi Trionamuktam Jagradadi Mayam Tatha Aumkar Ek Susamvedyam Yatpadam Tannamamyaham. Om Shanti. Mandukya Upanishad Ke Madhyam Se ऋषि इस बात का निर्देश करते हैं कि जब तक इंसान अपने सही स्वरूप को नहीं पहचानता और उपनिषद में पहचानने का अर्थ जानना और मानना भी है, केवल आंखों से देख के हम कुछ पहचानते हैं लेकिन समग्रता से वो हमारे जीवन में ढल जाए ये नहीं होता। तो स्वरूप, पहले तो स्वरूप ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है, स्वरूप का अर्थ ही इतना होता है जो इंद्रियों की पकड़ में ना आए। रूप उसे कहते हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आ सके, और स्वरूप का अर्थ होता है अपना सही रूप क्या है। तो जब तक हम उस परम, इसी को परम तत्व भी कहते हैं, संक्षेप में आप ऐसा समझ लो कि जो कुछ भी हम चाहते हैं, सचमुच में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमारे अपने पास ही है, वो स्वरूप उपलब्धि ही है। ये ना जानने के कारण हम और इधर उधर वस्तुओं में उलझे रहते हैं, और जब स्वरूप उपलब्धि, स्वरूप का पता लगता है तो फिर सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है जो भी हम करना चाहते हैं। इसीलिए उपनिषदों में इस बात का निर्देश किया गया कि हमें उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं बचता। हमें उसे जानने का प्रयत्न करना है जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं। जिस एक के ही जान लेने से सब कुछ जानना हुआ हो जाता है, उसको जानना, और उसी का ही पारिभाषिक शब्द स्वरूप है कि स्वरूप को जानने, इसी को ही मैं का अनुसंधान भी कहते हैं, अहम को जानने के, अहम क्या है। अर्थात हमारा ये जो शरीर है, पूरे का पूरा हम विश्लेषण करें, ये हाथ पैर आंख नाक मुंह बुद्धि चित्त ये सब चीजें मिलाकर भी एक एक को लेकर ये विश्लेषण करते हैं कि क्या मैं ये हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं ये हाथ हूं, आंख हूं, क्या हूं मैं, और फिर इसी का बात करते जाते हैं कि मैं इसको जानने वाला हूं, मैं इसका देखने वाला हूं, इसलिए ये मैं नहीं। इस उपनिषद में तीनों अवस्थाओं के माध्यम से, अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के माध्यम से ये बतलाया गया कि जागने वाला, स्वप्न देखने वाला और सो जाने वाला अपना स्वरूप नहीं, ये तो अंतःकरण बुद्धि का काम है, और जो हमेशा जागता रहता है उसको आत्मा कहते हैं, वो आत्मा ही अपना असली स्वरूप है। तो आत्मा को समझाने के लिए, हालांकि ये भी सभी शास्त्र कहते हैं कि वो समझ से बाहर है, अगर वो भी बुद्धि की पकड़ में आ गया तो फिर तो जो जो बुद्धि की पकड़ में आएगा उसको जाना जा सकता है, जो जाना जा सकता है वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, और जो बदलने वाला है वो नाशवान है। इसलिए बुद्धि की पकड़ में कुछ आ जाए, कल्पना में कुछ आ जाए, मन में कुछ आ जाए, तो वो समझ लो कि वो सब दृश्य कोटि में है। दृश्य का मतलब होता है जिसे हम, जो हमारे से अलग हो और हम उसे दूर से देख रहे हैं या समझ रहे हैं। स्वप्न के भी दृश्य ही होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज भी दृश्य होगी वही समझ में आ सकती है, और जो समझ में आ जाएगी वो स्थायी नहीं, वो नाशवान। ये एक सिद्धांत है अटल, और उसी को ही समझने के लिए कुछ इशारे मात्र हैं। इशारे मात्र ये हैं कि जो कुछ वो नहीं है उसको नकार से चले जाओ कि वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं। ये एक प्रक्रिया है जो इस उपनिषद के सप्तम श्रुति से बात समझाई जा रही है। इसका सातवां मंत्र था जिसका हमने थोड़ा अर्थ बीच बीच में कर देते हैं, न अंतः प्रज्ञम, न बहिष् प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घन, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ना वो तत्व जो है उसमें बाहर मुखता अंतर्मुखता नहीं होती कि वो बाहर मुखी है, वो अंतर्मुखी। देखो, बाहर और अंदर के बीच में कोई ना कोई एक रेखा चाहिए, कोई ना कोई एक दीवार चाहिए जिसको हम देख के कहें वो बाहर है, मैं अंदर हूं। बाहर और अंदर परिच्छिन्न वस्तु में कल्पित है। परिच्छिन्न वस्तु में कल्पित है का अर्थ ये है कि जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये हम कमरे के अंदर हैं और कमरे के बाहर की हम कल्पना करते हैं कि वो बाहर है। कोई भी चीज, कार जा रही है, कुछ और जा रहा है, तो हम कहेंगे हम अंदर हैं, कार बाहर। लेकिन जब कमरे को देखेंगे तो पूरे का पूरा कमरा बंबई में है, बंबई के अंदर है, हम ऐसा कहेंगे कि ये कमरा या ये आश्रम बंबई के अंदर है और उल्हासनगर बाहर है। तो अब बाहर अंदर जो अभी तक इस कमरे को ध्यान में रखते हुए हम कह रहे थे, अपने को केंद्र मानकर हम कह रहे थे कि मैं अंदर हूं, वो बाहर। अब थोड़ा सा आपकी व्यापकता हुई तो पता लगा कि कमरा भी अंदर है और बाहर उल्हासनगर। फिर महाराष्ट्र की दृष्टि से नजर करोगे तो आपको लगेगा कि उल्हासनगर भी अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, अमृतसर बाहर। और अगर देश की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो फिर अमृतसर भी अंदर है और लाहौर बाहर। ऐसे ही अगर आप पूरी दुनिया की दृष्टि से सोचोगे तो सारी दुनिया ही अंदर है, और बाहर फिर आप आकाश को कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। और अगर आप ब्रह्मांड की दृष्टि से नजर करोगे तो फिर आकाश भी और महतत्व भी ये सब कुछ अंदर ही अंदर है। ऐसा करते करते अंततः बाहर कुछ नजर रहना नहीं। तो बाहर और अंदर की जो एक कॉन्सेप्ट है, बाहर और अंदर की जो एक अवधारणा है, मान्यता है, वो असलियत नहीं मानी हुई है। देखो, अगर हम ये कहें कि आत्मा अंदर भी है और बाहर भी है, ये आत्मा के बारे में बात हो रही है, न अंतः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम। लगता ऐसे है कि जैसे हम जाग रहे हैं तो हमारी प्रज्ञा बाहर के विषयों को अपना अध्ययन का आधार मानकर तो बाहर जाती है, बाहर की चीजों को हम जानते हैं, इसलिए बहिः प्रज्ञा कह दिया। जब हम स्वप्न देखते हैं तो सब कुछ अपने अंदर ही है, इसलिए उसको अंतः प्रज्ञा कह दी। अब वास्तविकता ये है कि बाहर और अंदर, अगर आत्मा हमारे अंदर है और आत्मा हमारे बाहर है, तो फिर बीच में क्या है? अंदर और बाहर की बात ठीक है, आप सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो अंदर और बाहर का जब भी आप ध्यान करेंगे, अंदर और बाहर के जब भी आप इस परिकल्पना पर चिंतन करेंगे, तो अंदर और बाहर तो बीच में कुछ आए तो तभी है। देखो, आप ऐसा समझ लो कि एक मुट्ठी बंद करते हैं हम, मैं कहता हूं कि आकाश इस मुट्ठी के अंदर है और आकाश इस मुट्ठी के बाहर भी है, और फिर आप ये देखोगे कि मुट्ठी स्वयं आकाश में है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। मुट्ठी को हम ऐसे बंद करके यहां रखें तो मेरी मुट्ठी में भी आकाश, मुट्ठी के बाहर भी आकाश, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मुट्ठी ही आकाश में है। शास्त्र की भाषा में कहते हैं मुट्ठी नाम की कोई चीज नहीं है, आकाश में कल्पित है। एक पॉइंट बना लिया हमने बात करने का अंदर बाहर करके, क्योंकि व्यवहार चलाना है। वस्तुतः आकाश में कुछ कल्पित होता ही नहीं, आकाश ही आकाश, ये आकाश ही है। और ये बात भी ठीक ही है कि अंत में रहना आकाश नहीं है, ये मुट्ठी नहीं थी तब भी आकाश था, मुट्ठी नहीं रहेगी तब भी आकाश रहेगा, और मुट्ठी के होते हुए भी ये आकाश ही है। जो इस बात को जान गया वो निकल गया संसार से। जिसके अनुभव में ये बात आ गई, जिसके अनुभव में परम चेतना में सब कल्पित है, ऐसा आ गया तो उसकी नजर चेतन चेतन पर ही रहेगी, कल्पित पर नहीं रहती। कल्पित पर रहेगी भी तो पता रहता है कि ये कल्पित है, वास्तविक नहीं, वास्तविक तो आकाश ही है। मुठियां तो पता नहीं कितनी इसमें बनी कितनी गई, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। इसलिए मुट्ठी से तादात्म्य स्थापित कर कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सफेद है, ये काली है, तो हम राग द्वेष में फंस जाते हैं। चेतन के विवर्त की परिकल्पना को सत्य मानकर हम राग द्वेष में फंसते हैं। बात केवल इतनी ही है कि राग द्वेष रहित जीवन हो जाए, और शास्त्र का कोई अभिप्राय नहीं। चेतन की अनुभूति हो जाए, वो हो जाए अच्छी बात, लेकिन संसार में कोई हर रोज बुद्ध पैदा नहीं होते, ज्ञानेश्वर हर दिन कोई पैदा नहीं होते, हो गए कभी फिर होंगे, लेकिन आम आदमी के लिए वो आदर्श है। और शास्त्र का भी प्राय राग द्वेष से रहित होकर जीवन जीना, कि ये हमारे जीवन में से राग और द्वेष निकल जाए। जिसको हम राग और द्वेष कहते हैं, इसी को ही आम बोलचाल की भाषा में काम और क्रोध कहते हैं। ये काम और क्रोध जीवन में से निकले तो बस जीवन सुगम हो जाता है। ये निकलने के बाद संसार की सत्यता भी नजर आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है। देखो अब जब तक हम चीजों को सत्य मानते हैं तब तक राग द्वेष रहता है, जब इन चीजों को हम चेतन में कल्पित मानते हैं जब तक हम ये मानेंगे कि मेरी मुट्ठी के अंदर आकाश है और मुट्ठी के बाहर भी आकाश है और मुट्ठी बीच में सत्य आकाश में बाधा बन रही है। आकाश एक ऐसा हमारे निकटतम एक वो तत्व है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा को समझाने के लिए इसीलिए बार बार आकाशवत ये शब्द आता है। आकाशवत ही है लेकिन आकाश भी उसको नहीं समझा सकता। इसको हम इसलिए आकाश को लेते हैं क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसको बांटा नहीं जा सकता। ये इसका कितना भी हम करें विवेक करोगे तो पता लग जाएगा आकाश एक ही है और बाकी इसमें ये दीवारें इसमें घर ये कल्पित। कल्पित का मतलब व्यवहार चलाने के लिए कि ये इतने में आप रह लो, इतने में वो रह ले, इतने में ये कर ले, लेकिन ये है कल्पित ही, ये बदलते ही रहेंगे। अगर इतिहास को देखें आप तो पूरे देश का इतिहास, कभी कोई राजा बना, कभी कोई बना, कभी कोई बना, कभी कोई बना, और आज भी आप पुराने राजमहल देखने जाओ, अब तो लोग टूरिस्ट प्लेसेस बन गई वो, और वहां कल्पना करो कभी कौन कौन वहां था, कभी उन राजमहलों के 10 किलोमीटर आसपास कोई आम आदमी जा नहीं सकता था, चला जाए तो मृत्यु दंड मिलता था। आम आदमी आज उन्हीं महलों में, वो जो उनके प्राइवेट रूम थे उनमें जाके बैठ के चाय पीते हैं। तो इस तरह से ये बदलने वाली चीजें, बात कुल ये है कि कभी वो था आज ये है, कल को कुछ और होगा ये होगा, तो इसमें से सत्य किसको मान लें। इसलिए ना तो बहिष्प्रज्ञ को सत्य मानो ना अंतःप्रज्ञ को सत्य मानो, ये बात यहां कही गई है। वृत्तियां बाहर मुखी हों या अंतर्मुखी हो दोनों बराबर हैं, उपलब्धि की दृष्टि से भी बराबर हैं। बाहर मुखी होकर भी जो जो हम प्राप्त करते हैं और अंतर्मुखी होकर भी जो प्राप्त करते हैं, सो जाने पर दोनों ही नहीं रहते, बराबर हो गए। या ये हो कि सो जाने पर जागृत की चीजें हमारे साथ रह जाती हों या स्वप्न की साथ रह जाती हों, तो फिर एक को सच मान ले एक को झूठ मान ले। लेकिन ये होता है कि जिस समय हम सो गए तो ना जागृत में प्राप्त की हुई चीजें रहती हैं ना स्वप्न में चीजें प्राप्त की हुई रहती हैं। जागृत के शत्रु और मित्र भी नींद में खत्म हो जाते हैं और स्वप्न के शत्रु और मित्र भी नींद में खत्म हो जाते हैं। जब दोनों की हकीकत इतनी ही है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर एक को महत्व देना और दूसरे को गौण समझना ये केवल बुद्धि का भ्रम मात्र है असलियत में। और फिर उसके साथ ही साथ ये भी बात है कि जब हम जाग जाते हैं तो नींद वाली चीजें नहीं रहती। नींद में जिस आनंद का हमने भोग किया, नींद में जिस सुख का हमने अनुभव किया, वो जागने पर नहीं रहता। तो इसलिए जो भौतिक उपलब्धियों की दृष्टि से, प्राप्त करने की दृष्टि से, ना जागृत में प्राप्त किया हुआ साथ में रहेगा और ना ही स्वप्न में प्राप्त किया हुआ साथ रहेगा और ना ही नींद में प्राप्त किया हुआ जिसको हमने चेतोन्मुख आनंद भूख ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो नींद में जिस आनंद को जिस सुख का अनुभव किया था, जागने पर वो नहीं, जागने पर फिर वही क्लेश शुरू हो गए जो थे। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका कोई सार नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। तो फिर महत्व किसका है, बात ये आ गई कि जब इन सब का महत्व नहीं, ये एक तमाशा सा है, तो महत्व किसका है। शास्त्र ने कहा कि महत्व उसका है जो इन तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, वो ना स्वप्न देखता है, ना जागृत में चीजें प्राप्त करता है और ना ही वो नींद में अज्ञान में लीन होता है, वो है आत्मा। तो उस आत्मा के लिए ये बात कही जा रही है, न अंतः प्रज्ञा न बाहिष प्रज्ञा न उभयतः प्रज्ञा न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। वो केवल अज्ञान रूप हो ऐसा भी नहीं है, केवल वो बाह्य मुखी हो ऐसा भी नहीं है, केवल वो वैसा हो वैसा भी नहीं। उसी को थोड़ा समझाने के लिए इसी ही श्रुति में यह कहा, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशेयम एक आत्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया। इसमें ये बात कही गई है कि वो अदृष्ट है, वो दिखलाई नहीं देता, वो अव्यवहार्य है, उससे व्यवहार नहीं किया जा सकता और वो भी व्यवहार नहीं करता किसी से। अग्राह्य, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता और वो भी किसी को ग्रहण नहीं करता। उसका कोई लक्षण नहीं है और ना ही वो किसी को लक्षित करता है। उसको उपदेश करके समझाया नहीं जा सकता और ना ही वो स्वयं समझाता है व्यपदेशे। वो है क्या? एक आत्म प्रत्यसारम। एक आत्म प्रत्यसारम का मतलब है कि वो हमेशा एक रस रहता है। एक रस, देखो हमारी बुद्धि एक रसता को नहीं पकड़ सकती। एक रसता को नहीं पकड़ सकती का अर्थ ये है, आप ये समझ लो कि अगर जैसे हम सब बैठे हैं, किसी तरह से सबकी शक्ल एक जैसी हो जाए, कोई रत्ती भर किसी में कपड़े भी एक जैसे, शक्लें भी एक जैसी, पूरे बंबई में जितने भी लोग हैं हर एक की शक्ल कपड़े चलना फिरना एक जैसा हो, एक जैसा हो गया तो आप स्वयं कल्पना करो क्या पहचानोगे, क्या करोगे, अपनी पहचान ही नहीं रहनी कि मैं ये हूं कि ये सामने वाला। तो एक ये मोटे तौर पर आपको बात कही। एक आत्म प्रत्यसार का मतलब, प्रत्यय शब्द एक बहुत सुंदर और चिंतनीय शब्द। प्रत्यय शब्द देखो, जैसे फर्ज करो ये टेबल मेरे सामने पड़ी है, मेज है, आप देख रहे हो। आप में से किसी को भी पूछा जाए कि क्यों जी इस मेज से बढ़िया कोई और मेज है कहीं या नहीं, तो हर एक कहेगा कि इससे बढ़िया मेज है, उसे कहो ले आओ जो बढ़िया। वो जो बहुत बढ़िया मेज है वो यहां लाके रखो और फिर उसी प्रश्न को दोहराओ कि क्या इस मेज से बढ़िया कोई बन सकती है या नहीं। आप कहोगे बन सकती है, उन्हें कहो फिर बनवा लो। आप दुनिया भर के कारीगर मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, पूरी धरती के कारीगर हों या दूसरे नक्षत्रों से, आप कहो कि ये मंगल ग्रह से आया है बनाएगा ये, और विश्वकर्मा स्वयं आ जाए सचमुच में और आपको भी विश्वास हो कि ये विश्वकर्मा ही है, और विश्वकर्मा उसको बनाए मेज को और बना के चला जाए, फिर भी आम आदमी से भी पूछो कि क्या इससे बढ़िया मेज बन सकती है या नहीं, कोई भी कहेगा इससे बढ़िया बन सकती है। तो जब अंतम जो जोर लगता था, बना भी बैठे कर भी बैठे, शाहजहां ने तख्ते ताऊस बनवाया लाल किले में, बड़ा प्रसिद्ध था उस समय का कि उस टाइम पे तख्ते ताऊस जो बाद में अंग्रेजों ने तोड़ा, उसमें कोहिनूर हीरा था वो ले गए, उसकी एक अपना इतिहास। या लोग जिसको देखने जाते हैं, अब ताजमहल आपको कोई कहे कि क्या ताजमहल से अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं है, आप सभी कोई भी ऐसा नहीं है जो ये माने कि ये अंतम बिल्डिंग है, इससे सुंदर कोई नहीं। लोग कहते हैं इससे अंतम तो चलो अमिताभ का बंगला ही इससे ज्यादा अच्छा। तो किसी का भी आप देखो सोचो कि अंतम बात जो आप कहो बनाने के बाद, फिर भी पूछा जाए कि क्या इससे बढ़िया कुछ है या नहीं, तो आप कहोगे कि इससे बढ़िया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज को आप समझते हो कि इससे बढ़िया भी बन सकती है, इसका अर्थ है कि जो मेरे सामने है उसमें कोई ना कोई कमी है। तभी तो हम कहते हैं कि इससे बढ़िया भी कोई बने। अगर सामने वाली चीज में कोई कमी ना हो, परिपूर्ण हो, पूर्ण हो अपने आप में, तो आप उसको कभी कह नहीं सकते कि इसमें कोई कमी है। तो जिसको भी आप ये सोच रहे हो कि इससे भी बढ़िया बन सकता है, वो है कहां जो बढ़िया बन सकता है? तो वो जहां कहीं भी है, आपकी बुद्धि में हो, आपकी भावनाओं में हो, आपकी तान में हो, उसको प्रत्यय कहते। प्रत्यय के रूप में वो पूर्ण है, अन्यथा पूर्ण नहीं है। जो कुछ भी है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जहां तक भी पहुंचोगे, वो पूर्ण नहीं। तो शब्द जितने भी हैं हमारे, कोई भी कुंभ कूप तक पहुंचे इतना कर सकती है डोर। शब्द जो भी हैं, ये हमें वहां तक ले जा सकते हैं, बस कुएं तक, लेकिन पानी में डुबकी लगाना, ये करना, ये शब्द नहीं लगवा सकते। शास्त्र इस बात की दूसरी तरह से व्याख्या करता। ऋषि ये कह रहा है कि जो आपको हर चीज लगता है कि इससे भी बढ़िया है, इसका अर्थ है कि वो चीज पूर्ण नहीं है, और आप पूर्ण हो, आप पूर्ण हो अपने आप में, इसलिए आपको बाहर जो भी देखेगा अपूर्ण लगेगा, क्योंकि पूर्ण के अतिरिक्त किसी भी चीज को कोई अपूर्ण कह नहीं सकता। अब ये उपनिषदों का चिंतन, अपनी पूर्णता का एहसास। जिस दिन ये बात पता लग जाए, अपनी पूर्णता का एहसास, देखो जब तक हम कुछ भी चाहते, कोई भी चीज चाहते हैं, किसी व्यक्ति को चाहते हैं, किसी वस्तु को चाहते हैं, जितना आप चाहते हो उतने उतने आप अपूर्ण हो।